ओम शांति। हजारों वर्ष पहले चीन के किसी एक सम्राट ने घोषणा की कि राज्य की मोहर मोहर बनानी है और उस मोहर में एक चित्र की आवश्यकता है। वो चित्र होना चाहिए एक मुर्गे का, बांग देता हुआ एक मुर्गा, पुकारता हुआ एक मुर्गा। तो राज्य के जितने भी चित्रकार होंगे वो अपना अपना चित्र बना कर दे और उसमें से जो सर्वोत्तम चित्र होगा उसे चुना जाएगा और वही राज्य की जो मुहर है उस पर अंकित किया जाएगा। दूर दूर से, देश विदेश से भी ऐसे असंख्य लाखों चित्र आते हैं। एक चित्र, एक एक चित्र एक से बढ़कर एक होता है। सभी चित्र इतने सुंदर होते हैं कि सम्राट को अब यह निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा चित्र चुना जाए। राज्य में एक बहुत बूढ़ा चित्रकार होता है, उसे बुलाया जाता है और उसे कहा जाता है कि आप इसका चुनाव करो कि सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट चित्र कौन सा है, क्योंकि जिस व्यक्ति का चुनाव आने होगा वह देश का कला गुरु बनेगा, बहुत बड़ा पारितोषिक उससे मिलेगा। तो वो बूढ़ा व्यक्ति आता है और कहता है कि जितने चित्र हैं एक ही भवन में रख दिए जाए, बहुत बड़े भवन में रख दिए जाए। और वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि सारे दरवाजे बंद कर दो, मैं शाम तक बता सकता हूं कि सर्वोत्तम चित्र कौन सा है। और वो व्यक्ति, वो बूढ़ा व्यक्ति एक जिंदा मुर्गा लेकर आता है और हर एक चित्र के पास जाकर उस जिंदा मुर्गे को सामने रखता है। शाम हो जाती है, वो बूढ़ा व्यक्ति बाहर आता है और राजा से कहता है, सम्राट एक भी चित्र योग्य नहीं है। राजा हैरान होता है, ऐसे कैसे हो सकता है, इतने बढ़िया बढ़िया चित्र आए हैं, एक भी चित्र ठीक नहीं है, तुम्हारा मापदंड क्या है? सम्राट पूछते हैं। वो कहते हैं, मेरा मापदंड बहुत आसान है, आपकी शर्त थी कि जो चित्र होगा वो बोलता हुआ मुर्गा हो, मैं ये जिंदा मुर्गा जिस जिस भी चित्र के पास लेके गया तो जिंदे वाला जो मुर्गा है उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी चित्र जिंदा नहीं है। सम्राट ने कहा, यह तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, अब क्या किया जाए, कहां से लाए ऐसा चित्र, इस देश के तुम ही सबसे बड़े कलाकार हो बूढ़े, क्यों नहीं तुम ही बनाते। वो चित्रकार कहता है कि ये अब संभव नहीं है क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, प्राण अब जाए तब जाए और समय बहुत लगेगा। सम्राट कहते हैं, नहीं चित्र तुम्हें ही बनाना है, कितने साल कितना समय लगेगा बताओ। वो कहता है, कम से कम 3 वर्ष लग जाएंगे। सम्राट कहते हैं, 3 वर्ष एक चित्र बनाने में? वो कहता है, हां, क्योंकि उसके लिए मुझे खुद मुर्गा बनना पड़ेगा। सम्राट कहता है, ठीक है, और उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है। सारी व्यवस्था राज्य की तरफ से होती है कि उसकी उसकी शर्त ही ऐसी होती है कि 3 साल मुझे लगेंगे। 6 मास के बाद सिपाही उस व्यक्ति को, उस पागल व्यक्ति को देखने राजा भेजता है, देखो जरा क्या हुआ चित्र का। तो सिपाही जब जाते हैं तो पाते हैं वह बूढ़ा चित्रकार उन जंगली मुर्गों के साथ में बैठा हुआ है। सिपाही वापस आ जाते हैं। एक साल के बाद फिर सिपाही जाते हैं। सिपाही पाते हैं कि वो बूढ़ा मुर्गा अब बूढ़ा व्यक्ति अब लगभग मुर्गे जैसा ही बन गया है। उन्हीं के साथ खेलता है, कूदता है, चिल्लाता है, पुकारता है, फिर वापस चले जाते हैं। 3 वर्ष पूरे होते हैं। 3 वर्ष के बाद राजा कहते हैं अब उसे ले आओ, पर अब तो लाने का क्या मार्ग, उसे उठाकर लाना पड़ा क्योंकि अब तक तो वो करीब करीब मुर्गा ही बन चुका था। तो वो राजा के सामने आता है और मुर्गों से आवाज करने लगता है। राजा कहते हैं कि मैंने तुम्हें मुर्गे का चित्र बनाने भेजा था, मुर्गा बनने नहीं। वो व्यक्ति कहता है चित्र बनाने में अब क्या देरी लगेगी, तुरंत सारा सामान ले आओ। तो रंग और सब कुछ लेके आते हैं और थोड़ी ही देर में वो एक मुर्गे का चित्र बना देता है। फिर एक जिंदा मुर्गा ले आया जाता है, बहुत सारे मुर्गे जिंदे, और जैसे ही वो जिंदा मुर्गे एक एक को उस चित्र के सामने लाया जाता है, सब घबराते हैं, कोई भागता है, कोई इधर दौड़ता है, कोई उधर दौड़ता है चित्र को देखकर। सम्राट पूछते हैं तुमने इन चित्रों में ऐसा क्या कर दिया, इस चित्र में आप क्या कहते हैं, क्या कर दिया उस चित्रकार ने, उसके अंदर भावनाएं भर दी, क्या कर दिया, चैतन्य बना दिया। हमारे निखिलेश भाई चित्रकार है, और क्या कर दिया, चित्र में जान डाल दी, और क्या कर दिया, क्यों ये चित्र इतना आकर्षक था, क्यों इसमें प्राण थे, क्यों इसमें वह था जो कि उन पुराने चित्र में नहीं था। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, चित्रकारों से मुलाकात, क्या कहा बाबा ने, कैसे चित्र बना रहे हो, क्या उसी स्वरूप में स्थित होकर चित्र बना रहे हो, क्या केवल उन रिवाजी चित्रकारों जैसे चित्र बना रहे हो। ऐसे चित्र बनाओ जिससे रूहानियत का अनुभव हो, ऐसे चित्र बनाओ। चित्र बनाने का तुम्हारा लक्ष्य क्या है, जड़ में चेतनता का अनुभव हो। वो तभी होगा जब व्यक्ति जो बना रहा है वो उसी स्वरूप में स्थित होकर बना रहा होगा। 1982 इंद्र शर्मा, बहुत बड़े चित्रकार, भक्ति मार्ग में बहुत सारी पेंटिंग्स जो आप देखते हैं, भक्ति मार्ग में कृष्ण की, विष्णु की, राधे कृष्ण की, उनको यहां बुलाया गया था। 3 दिन तक बाबा के कमरे में योग किया था उन्होंने, क्योंकि किसका चित्र बनाना था, ब्रह्मा का। किस चित्र की बात हम कर रहे हैं, ये चित्र केवल वह चित्र नहीं है जिसे एक चित्रकार बनाता है। जड़ में चेतनता का अनुभव हो, जड़ चेतनता को प्रत्यक्ष करे, जड़ में रूहानियत का अनुभव हो, ऐसा चित्र बनाओ, बाबा के महावाक्य है। और बाबा कौन है, स्वयं परम चित्रकार है वो। हरी हरी वसुंधरा पर नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा चमन, दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, गीत है ना, ये कौन चित्रकार है, ऐसा परमात्मा वो चित्रकार है। वो जीवन रूपी चित्र को बनाने की कला सिखा रहा है। ये चित्र केवल वो चित्र नहीं है जो चित्रकार निकाले है, ये चित्र है जीवन का, ये चित्र है परम सत्य का। ये केवल चित्रकार अपना चित्र निकाल रहा ये नहीं है, हर एक वो चीज जो हम करते हैं सुबह से लेकर तो रात तक चित्र ही है, अमृत वेला चित्र है, मुरली चित्र है, भोजन चित्र है, कर्मयोग चित्र है, नुमाशाम का योग चित्र है, ज्ञान की चर्चा चित्र है, संबंध संपर्क चित्र है, रात को सोने की विधि चित्र है, कैसे भर रहे हैं, किन रंगों को हम भर रहे हैं इन चित्रों में, किन कौन सी भावनाएं हैं, कौन सी रूहानियत है सभी जड़ वस्तुएं, परंतु जैसे वह चित्रकार, क्योंकि उसे मुर्गे का चित्र बनाना था वह स्वयं ही मुर्गा हो गया। यदि हमें जीवन का परम चित्र बनाना है, श्रेष्ठतम चित्र बनाना है, अपने संपूर्ण स्वरूप का चित्र बनाना है, हमें भी उसी स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। ऐसे रूहानी चित्रकार बनो, लौकिक नहीं, ऐसे अलौकिक चित्रकार बनो। विदेश में एक बहुत बड़े चित्रकार कवि हुआ था, विंसेंट वॉन गॉग। हमें लगता है इस धरती पर इससे बड़ा चित्रकार शायद ही कोई होगा, शायद ही कोई। माइकल एंजेलो है एक, परंतु वो जो चित्र बनाता था वो चर्चिस के लिए बनाता था, दूसरों के लिए बनाता था, पैसों के लिए बनाता था, दूसरे मेरी स्तुति करे, दूसरे मेरी प्रशंसा करे, दूसरों के दिखावे के लिए बनाता था, नाम बहुत कमाया अपने ही जीवन काल में। परंतु एक दूसरा ऐसा नाम है, विंसेंट वॉन गॉग, उसका उसके जीवन काल में किसी ने उसको जाना नहीं कभी, पर वो जो चित्र बनाता था प्राण फूंक देता था उनमें। लोगों को लगता था ये क्या बनाता है, व्यर्थ, ऐसा इंसान कुछ काम का नहीं, ना तो काम करता है, कुछ नहीं करता, जो काम दिया जाता है बिगाड़ देता है, कभी कोई पैसा नहीं कमाया, ना कभी विक्रेता था, चित्र तो बनाता था पैसे नहीं कमाता था, पर बोझिल था अपने भाई पर। परंतु चित्र ऐसे बनाता था कि उसके जाने के बाद लोगों ने समझा वो क्या था। पिकासो तो उसके कहीं पर भी आसपास नहीं आ सकता, क्योंकि जो वो बनाता था, जो चित्र उसके थे, ऐसे थे किसान को बना रहा है पर आधा किसान और कब मिट्टी चालू हो रही है पता नहीं। घंटों सुबह जाता था खेतों में, सुबह से लेकर रात तक बैठता रहता था और बनाते रहता था कुछ। उसके चित्र अजीब और विचित्र होते थे, झाड़ जो आसमान को छू रहे हैं, लोग कहते थे ये कौन से झाड़ है, ये कैसे झाड़ है। वो कहता था धरती की ये चाह है आसमान को छूने की, धरती मुझसे कह रही है मुझे आसमान को छूना है, वही मुझे दिखाई दे रहा है। उसके भाई ने एक बार उसके पास एक व्यक्ति को भेजा, एक ग्राहक कस्टमर को, ताकि उसको थोड़ी खुशी हो कि कोई आए और उसका चित्र खरीदे और उसे थोड़े पैसे मिले। उसके ही भाई ने भेजा, वो व्यक्ति गया, उसने चित्र देखा और खरीद लिया। तो विंसेंट वॉन गॉग ने पूछा कि इतने सारे चित्र है तुमने अभी तक उनको देखा भी नहीं और आए और खरीद लिए, जरूर कुछ गड़बड़ है, तुम पारखी नहीं हो, तुम चित्र खरीदने नहीं आए हो, तुम तो ऐसे ही आए हो। बाद में पता चलता है कि उसके भाई ने ही भेजा, तो भाई उसे माफी भी मांगता है। ऐसा वो एक अद्भुत चित्रकार था। बाबा कह रहे हैं तुम हो रूहानी चित्रकार, तुम हो अलौकिक चित्रकार, जीवन में ही रंग भर दो, ऐसे रंग भर दो कि जीवन ही ना छूटे, ऐसे रंग भर दो कि जीवन का जो चित्र है उसमें चेतनता हो, प्राण हो, जीवन ही ऐसा हो कि देखते ही लोगों को लगे ऐसा बनना है। तो आज सुबह की मुरली शुरुआत करते हैं। क्या कहा बाबा ने शुरू में? सभी ने मुरली सुनी है, बताओ शुरुआत में। क्या देख रहे हैं बच्चों को? तो देख रहे उनमें क्या देख रहे हैं? चमकता हुआ सितारा देखने से पहले क्या देख रहे हैं? लगन में मगन। तो बाबा वर्तमान को देख रहे हैं और भविष्य को देख रहे हैं। वर्तमान में लगन में मगन की स्थिति को देख रहे हैं और वर्तमान और भविष्य में प्राप्तियों को देख रहे हैं। लगन में मगन की स्थिति क्या देख रहे हैं? लगन में मगन की स्थिति। किस बात में लगन में मगन? सबके लिए होमवर्क, जो लिखना चाहे इस पर कल पॉइंट्स लिखे। किस बातों में लगन में मगन रहना है? कुछ बातें अभी हम चर्चा करेंगे, कुछ आप लिखना। याद में, बाप के प्यार में, और किस किस में? किस में? पढ़ाई में, और पढ़ाई के चिंतन में, ज्ञान के मनन में, ज्ञान के अध्ययन में, ज्ञान की चर्चा के लगन में मगन, और सेवाओं में, निस्वार्थ सेवाओं में, निमित्त भाव वाली सेवाओं में, श्रेष्ठ सेवाओं में, और किस में? बाबा की आशाओं को पूरा करने में। वाह, बाप की आश को पूरा करने में। और किस में मगन रहेंगे? संसार की आत्माएं किसमें मगन है? विकारों में। संसार की आत्माएं किसमें मगन है? अंधकार में डूबी हुई है। सारा समाज, सारा संसार कहां डूबा है? व्यर्थ में, नकार में, विकर्म में, विकल्प में। ऐसे संसार में हमें किसमें मगन रहना है? हमें हमारी लगन किस बात की हो? संसार का परम कल्याण करने में, पुण्य कर्म करने में, श्रेष्ठ कर्म करने में, श्रीमत अनुसार कर्म करने में, संसार की आत्माओं को मास्टर सद्गुरु बन क्या देने में? आज ही की मुरली गुरु मंत्र देने में। कानों में क्या फूकना है आत्माओं के? गुरु मंत्र। तो इस पर आप आगे और लिखना। तो बाबा किन आत्माओं को देखकर हर्षित हो रहे हैं? आत्माओं के वर्तमान को और भविष्य को, भविष्य प्राप्तियों को। क्या थे, क्या बन गए और क्या बन रहे हो? एक एक विशेष आत्मा है संसार की याद की। कैसी महान दृष्टि है उसकी, जो उसकी दृष्टि वो हमारी दृष्टि। एक एक विश्व के आगे महान आत्मा है। एक एक के मस्तक पर भाग्य का तिलक चमक रहा है। पहली चार लाइनें हैं ये मुरली की। हर एक स्वयं को क्या समझे और क्या देखे, अब ये दूसरा प्रश्न है। स्वयं को क्या देखना है? चमकता हुआ सितारा। क्या देखना है? एक रस चमकता हुआ सितारा। क्या देखना है? संपन्न एक रस चमकता हुआ सितारा। स्वयं को ऐसा देखना है, स्वयं को ऐसा अनुभव करना है। ऐसा जब हम स्वयं को अनुभव करेंगे और विश्व की आत्माओं को भी कैसा देखेंगे, चमकता हुआ सितारा। जब ऐसी रूहानी नजर, नेचुरल, जब यह प्रैक्टिस नेचुरल हो जाएगी तो क्या होगा। सूरज भाई जी ने ये पॉइंट अपनी क्लासेस में लगभग मुझे लगता है 50 से भी ज्यादा बार, 100 बार कही होगी, अलग अलग भिन्न भिन्न क्लासेस में आज तक। जब तुम्हारी नजर नेचुरल, जब तुम्हारी नजर नेचुरल रूहानी नजर हो जाएगी तो विश्व की आत्माओं की नजर तुम पर जाएगी। जब तुम सबको रूहानी सितारा देखोगे, स्वयं को भी रूहानी सितारा समझोगे और विश्व की आत्माओं को भी रूहानी सितारा समझोगे, चमकता हुआ सितारा समझोगे, अपने आप उनकी नजर तुम पर चली जाएगी। जैसे कौन सा उदाहरण दिया बाबा ने, सूर्य चंद्र तो दिया है और एक उदाहरण दिया है, जैसे परवाने, प्रकाश उन्हें पुकारता नहीं है, कहता नहीं है आओ आओ, निमंत्रण नहीं देता है, आओ मेरे पास मैं प्रकाश हूं, स्वतः ही आते हैं। वैसे तुम्हें भी आत्माओं को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः ही आएगी। अभी तुम्हारे जो आसपास है, संबंध संपर्क में है, सम्मुख है, वो उनको दिखाई देता है कि कोई प्रकाश है, कोई लाइट है, परंतु दूर की आत्माएं, सुदूर जो आत्माएं हैं उनको भी वो प्रकाश दिखाई दे। तो मूल बाबा ने यहां दो साधनाएं बताई है, एक आत्मिक स्वरूप की साधना और दूसरी आत्मिक दृष्टि की। बार 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 उस स्वरूप में स्थित हो जाना कि मैं एक सितारा हूं, और इसी स्वरूप से दूसरों को भी देखना। जितना हम ये अभ्यास करेंगे, स्वतः ही जैसे देह को देखने से देह याद आता है, देह को देखने से देह की सारी चीजें याद आती है, देह को देखने से देह के धर्म, देह की भाषा, देह का देश, देह की वृत्तियां, देह की प्राप्तियां, देह की इच्छाएं, देह की वासनाएं, देह की तृप्ति, देह की अतृप्ति, देह के भोग, सब कुछ याद आता है, देह के धर्म, देह के संबंध। देह को देखने से, केवल कल्पना मात्र करने से देह की, देह को देखा नहीं परंतु मन में देह की कल्पना की, वो भी देह का ही आकर्षण है। जब देह को देखते ही इतनी सारी चीजें आ जाती है, उसी तरह आत्मा को देखते ही सब कुछ आत्मा से संबंधित जो भी है वो सब आ जाएगा, स्वदेश, स्वरूप, स्वधर्म, स्वस्थिति, स्वसंस्कार, सब कुछ स्वतः ही आएगा। मूल अभ्यास है आत्मिक दृष्टि का, जो भी देखे उन्हें क्या देखना, आत्मा। कुमारों से मुलाकात, अव्यक्त वाणी, 1972। देह सांप है, सांप में विष होता है, देह सांप है, सांप में विष होता है, उस सांप ने यदि डंक मारा तो बच सकते हो, इस सांप से बच नहीं सकते। इसलिए सभी कुमार, अव्यक्त महावाक्य, आज से प्रतिज्ञा करो कि केवल और केवल मस्तक मणि को देखेंगे, देह को नहीं देखेंगे। यदि संकल्प से, यदि संकल्प से और नजर से, हाथ से नहीं, हाथ से नहीं, संकल्प से और नजर से देह को देखते हो तो यह क्या है। अव्यक्त महावाक्य बाबा के क्या है, ये क्या है? आधा उत्तर राइट है, अपवित्रता। ये क्या है? मलेच्छ, मलेच्छ। ये क्या है? यदि देह को हाथ से नहीं संकल्प और नजर से देखते हो तो, देखते हो या टच करते हो तो ये क्या है? बाबा के महावाक्य है, यदि इस देह को संकल्प से या नजर से टच करते हो तो यह महा 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 पाप है। थ्री टाइम्स महा, थ्री टाइम्स महा। मैं क्या देख रहा हूं? किसको देख रहा हूं? क्या इस देह में सौंदर्य है? काहे का सौंदर्य? इसके लिए अभ्यास कौन सा करना है? सबको आत्मा देखने का। जैसे ये जगत है जहां पर केवल सितारे हैं, केवल और केवल सितारे हैं। बहुत देख लिया देह को, बहुत भोग भी लिया इस देह को, आज तक कभी तृप्ति नहीं हुई है। मृग मरीचिका है, वासना है। उसी तरह जिसी जैसे किसी रेगिस्तान में उसको लगता है कि वहां कोई पानी है, जाता है कुछ भी नहीं है, रेत है चमकीली। इस रेत से निचोड़ के कभी कुछ नहीं निकलेगा, आत्मा अतृप्त ही रह जाती है। इसके लिए कौन सा अभ्यास करना है? आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। अब आत्मिक दृष्टि का अभ्यास में क्या क्या करें, यह प्रश्न है। आत्मिक दृष्टि कैसे हो, क्या देखे? जब किसी को देखे तो गुण देखे, विशेषता देखे, ठीक है। और 10 बातें बताओ। अगर किसी को देखे तो आत्मिक दृष्टि के अभ्यास में कौन कौन सी चीजें देखनी है, ताकि यह अभ्यास आत्मिक दृष्टि का अभ्यास कहा जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आत्मिक दृष्टि का अभ्यास तो करना है, आत्मिक दृष्टि की साधना तो करना है, परंतु जब देखे किसी को तो क्या देखे? सबसे पहला तो बताया गुण और विशेषता, दूसरा बताया क्या देखो, भाई, आत्मा, भाई देखो, तीसरा वही वही पॉइंट रिपीट नहीं करना, चमकता हुआ सितारा देखो, चौथा मस्तक पर मणि देखो, चमकता हुआ सितारा देखो, मस्तक पर मणि देखो, इस ड्रामा का ये एक विशेष एक्टर है, यह देखो, बाबा का ये एक विशेष रतन है, यह देखो, यह एक यूनिक सोल है, यह देखो, और क्या देखो, लाइट देखो और माइट देखो। गर्दन से नीचे देखने की आवश्यकता ही नहीं है, इधर मस्तक पर यहां मणि चमक रहा है, दिखता नहीं है तो देखो, इमेजिन करो, विजुलाइज करो, और क्या देखो, भाग्य को देखो, कितना कितनी महान। यदि ब्राह्मण आत्मा है तो उसके भाग्य को देखो, यदि ब्राह्मण आत्मा नहीं है तो उसको देखकर उसके ब्राह्मण उसकी आत्मा को ऐसा करंट दे दो कि भाग्य ही जग जाए, कपाट खुल जाए, सम्मोहन हो जाए। ऐसी पावरफुल स्टेज पर स्थित होकर, आज सुबह की मुरली, ऐसी पावरफुल स्थिति में स्थित होकर, सूर्य समान, चंद्रमा समान संपन्न स्थिति में स्थित होकर रूहानी नजर दौड़ाओ आत्माओं के ऊपर। यदि ब्राह्मण आत्मा है तो उसके भाग्य को सोचो, परंतु यदि उसके अवगुणी दिखाई दे तो क्या करेंगे? गुण दिखाई नहीं दे रहे, अवगुण को परिवर्तन वो करने को तैयार नहीं है। शुभ भावना तो बहुत रखी रहे, साक्षी हो जाओ, साक्षी हो के रहम दिल क्षमा भाव, और बाबा को बता के क्या कर दो, बाबा को बता के हवाले कर दो बस। चाहे ब्राह्मण आत्मा कैसी भी हो, उसके कितने भी कड़े संस्कार हो, क्या भी हो, उसमें तीन विशेषताएं जरूर है। चाहे कितनी भी कैसी भी हो, बिल्कुल उसके संस्कार नहीं बदले हैं। मुरली में हमारे बाजू में ही बैठा था, जब मुरली वाक्य महावाक्य चले थे, तुम्हें मीठे बोलना है, और दोपहर में उसी ने ऐसे व्यंग बाण छोड़े कि हम घायल हो गए, और दूसरे दिन फिर हमारे ही बाजू में है, तुम्हें बहुत मीठा बनना है, दुनिया बहुत कड़वी है, और वो हमारे ही बाजू था, और फिर दोपहर को वापस उसी ने कुछ कह दिया, तो क्या करेंगे। तीन विशेषता उसमें है। सबसे पहली, उसने अवजानंती माम मुड़ा, गीता में कहा है मूर्ख मेरा उपहास उड़ाते हैं, मैं साधारण तन में आता हूं। उसने उस साधारण तन में आए हुए भगवान को तो जान लिया, शंकराचार्य उसे जान नहीं पाए, महात्मा धर्मगुरु उसे जान नहीं पाए, उस साधारण तन में आए हुए परमात्मा को उसने पहचाना, क्या यह उसकी विशेषता नहीं है। एक दूसरा पवित्रता के व्रत को धारण कर लिया। संसार में बड़े बड़े गुरु नेताएं धर्म नेताएं इसको नहीं धारण कर पाते, हंगामा हो रहा है उत्तर भारत में। कर्फ्यू लग रहा है, संसार की आत्माएं नहीं धारण कर पाई, इसने तो किया। तीसरा, मनसा या वाचा या कर्मना अपने जीवन को बाबा के प्रति समर्पित किया। चाहे मधुबन, चाहे सेवा केंद्र, चाहे घर, कहीं पर भी, चाहे स्थूल या सूक्ष्म, ये तीन विशेषताएं हरेक में है, चाहे कितने भी अवगुण हो। तो हमारी बात चल रही थी आत्मिक दृष्टि का अभ्यास कैसे करें, गुणों को देखना, विशेषताओं को देखना, भाग्य के सितारे को देखना, विशेष एक्टर समझना, हीरा देखना, चमकता हुआ मणि देखना, डायमंड देखना, यूनिकनेस को देखना, स्पेशलिटीज के ऊपर फोकस करना, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो। भगवान के महावाक्य है कि तुम में और बाप में अंतर क्या है, यदि किसी में नौ गुण है और एक अवगुण है तो तुम बच्चे उस अवगुण को देखते हो, और बाप किसी में नौ अवगुण है और एक गुण है उसको देखते हैं। यह अंतर है तुम में और बाप में, तो हमें बाप समान बनना है। तो जैसी उसकी दृष्टि वैसी हमारी दृष्टि, जैसे उसकी वृत्ति वैसी हमारी वृत्ति, जैसे उसके संस्कार वैसे हमारे संस्कार, जैसी उसकी नेचर वैसी हमारी नेचर। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। शास्त्रों में ध्रुव तारे का गायन है। ध्रुव तारा पता है ना, पोल स्टार, लोड स्टार, नॉर्थ स्टार, कई सारे नाम है उसको। ध्रुव तारा आकाश में होता है, अचल, गतिहीन, और भारतीय संस्कृति में, भारतीय पुराणों में, भागवत में, विष्णु पुराण और अलग अलग जगह पर ध्रुव का गायन है। ध्रुव तो पता है ना कौन था, क्या किया था उसने, कहानी बहुत ही रोचक है और शायद हमारी ही कहानी है। और उस कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आज से हमें करनी है। दिखाया है मनु का बेटा उत्तानपाद, उसकी दो पत्नियां, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुनीति जो होती है उसका बेटा होता है ध्रुव, छोटा 7 साल का। एक बार अपने पिता की गोद में जाकर बैठता है तो सुरुचि जो होती है छोटी रानी उसे निकालकर बाहर करती है और कहती है कि जब तक तू मेरा बेटा नहीं जन्म लेता तब तक तू इस पे नहीं बैठ सकता, जाओ जाकर नारायण की प्रार्थना करो, पूजा करो, उसको प्रसन्न करो। वो छोटा सा बेटा अपनी मां के पास जाता है, रोता है, कहता है कि अब क्या, मैं तो तुम्हारा ही बेटा बनूंगा पर उसका बेटा नहीं बनूंगा कभी भी। परंतु बात बात में वो पूछता है ये नारायण कौन है और मुझे उसे पाना है। तो मां की अनुमति लेता है और जाता है। छोटा सा बालक, उसे बीच में गुरु मिल जाता है, मंत्र देता है गुरु मंत्र। और यह छोटा सा ध्रुव 6 मास तक तपस्या करता है। क्या करता है? 6 मास तक तपस्या करता है। धीरे धीरे सब कुछ ही छोड़ देता है। बीच में परीक्षाएं होती है बहुत सारी। इंद्र उसकी मां का रूप धारण करके आता है उसकी तपस्या भंग करने। दैत्य को भेजता है, दिखाया लास्ट में भगवान के रूप में नारायण प्रकट होते हैं। ध्रुव स्तुति, अपना शंख उसके मुंह में लगाते हैं। उसे तो यह भी नहीं पता है कि बोलना कैसे है, स्तुति कैसे करनी है। और उसको वरदान देते हैं कि तू अक्षय राज्य करेगा और बाद में राज्य करने के बाद आकाश में क्या बन जाओगे? ध्रुव तारा। सप्त ऋषि भी उसकी रक्षा करते हैं। तो इस कहानी में महत्वपूर्ण बात है, यदि ध्रुव तारा बनना है, यदि ऐसा सितारा बनना है जो अचल है और जो अडोल है, अडिग है, तो क्या करना पड़ेगा? दृढ़ता से तपस्या करनी पड़ेगी। कितने मास? 6 मास। तो आज कौन सी तारीख है? कैलकुलेट कर रहो अपनी डायरी में, आज से तपस्या आरंभ। 27 तारीख है आज की, अगस्त मास 2017। तो संकल्प करना है आत्मिक दृष्टि के अभ्यास की तपस्या अगले 6 मास के लिए। किस भूमि पर बैठकर तब ये व्रत वरदान ये संकल्प कर रहे हो? आज की मुरली में 2 वाक्यों का प्रयोग किया है बाबा ने इस भूमि के लिए। कौन सी भूमि है ये? कौन सी भूमि है ये? कौन सी भूमि है आज की? अव्यक्त मुरली सुबह की। मधुबन के नाम नहीं गिनाओ, मधुबन के नाम तो बहुत है, 100 के ऊपर नाम है। ये भूमि कौन सी है आज की अव्यक्त वाणी से? जो बताएगा उसको इनाम। आज की अव्यक्त वाणी से आशीर्वाद की खान, अधिकार लेने का स्थान। किसने बताया? वेरी गुड। तो ये भूमि कौन सी है? अधिकार लेने का ये स्थान है, आशीर्वादों की ये खान है। यह मुट्ठी अगर कोई ले ले तो क्या कहेंगे? बाबा ने पूछा है, खान है यहां पर। तो श्रेष्ठ संकल्प करना है 6 मास की तपस्या का, जैसे शास्त्रों में दिखाया उस ध्रुव ने किया और बाद में ध्रुव पद को प्राप्त हुआ। पिछले संडे की मुरली, एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चों का और 1000 श्रेष्ठ संकल्पों का फल बाप दादा देते हैं। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चों का और बाप दादा कितने संकल्पों का फल देते हैं? 1000 श्रेष्ठ संकल्पों का फल देते हैं। भगवान वाच, इस वाक्य को लिख के रखो, बहुत पावरफुल वाक्य है। एक ही श्रेष्ठ संकल्प, यदि हम एक श्रेष्ठ संकल्प कर ले, इस तमो प्रधान विकारी पति दुनिया में रहते हुए हमें श्रेष्ठ संकल्प तपस्या करनी है। कोई सोच भी नहीं सकता इस संसार में, इस भौतिकता के युग में, विलासिता में डूबे इस संसार में कोई तपस्या का संकल्प करे। तो एक संकल्प तुम्हारा और 1000 श्रेष्ठ संकल्पों का फल ऊपर से आएगा। रूहानी दृष्टि की साधना। इसी कहानी में और एक चीज है, ध्रुव को कौन मिल गया बीच में? नारद मिल गया। कौन बन गया उसका? वो गुरु बन गया। और गुरु ने उसको एक मंत्र दिया था, कौन सा मंत्र था वो याद है किसको? ओम नमो वासुदेवाय नमः। तो बाबा कहते हैं मास्टर सदगुरु कौन हो? तुम हो। आज ही की मुरली है, मास्टर सदगुरु तुम हो, तुम्हें मंत्र देना है। गुरु मंत्र, मंत्र अर्थात मत। श्रेष्ठ संपन्न स्थिति में स्थित होकर आत्माओं को मत दो। सदगुरु, मास्टर सदगुरु, मास्टर टीचर का पार्ट बहुत हो गया, मास्टर शिक्षक का पार्ट हो गया, मास्टर दाता का पार्ट हो गया, अब कौन सा पार्ट बजाना है तुमको? मास्टर सदगुरु का। सदगुरु अर्थात अज्ञानंद तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलकया चक्षु ऋण मिलितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के तिमिर को जो नष्ट करता है वह गुरु, संसार के अज्ञान को नष्ट करने वाले हम मास्टर सदगुरु है। आत्माओं को वापस ले जाना है, एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान, जीवन मुक्ति का सर्टिफिकेट बाबा ने कहा है। दो, कितनी पावरफुल स्टेज चाहिए। दूर से आत्माएं देखे और उनको लगे कि ये लाइट है, यहां पर प्रकाश ही प्रकाश। ऐसी स्टेज बनानी है। कितने मास में? 6 मास में। और किसी ने 5 मास में बना दी तो बाबा क्या करेंगे? ऊपर से फूलों की वर्षा होगी। संसार की आत्माएं ढूंढ रही है, भटक रही है, क्या सोच रही है? क्या सोच रही है? क्या सोच रही है? यही तो नहीं, यही तो नहीं। दिख रहा है कि भारत से प्रकाश आ रहा है। भारत ही वो स्थान है जहां पर अध्यात्म आत्माएं हैं। यहां पर भटकती हुई ढूंढते हुई आत्माएं आएगी, ढूंढेगी कहां है, कहां है, कौन है वो? धर्मात्माएं कौन है? परमात्मा कौन है? भविष्यवाणी कर रहे हैं बाबा मुरली में। वो आत्माएं ढूंढ ढूंढ कर यहां पर आएगी। उनको सही निशाना, यथार्थ ठिकाना, सही निशाना और यथार्थ ठिकाना कौन देगा? हम ही देंगे। डबल विदेशियों से मुलाकात, हम ही देंगे। भारत स्पिरिचुअल गुरु है ही, पर बन जाएगा एक दिन। अध्यात्म के प्रकाश की किरणें यहां से विश्व में जाएगी। सारा संसार यहां आएगा, इस भूमि पर। तब जानेंगे ये भूमि कौन सी है। स्वामी विवेकानंद ने कभी भविष्यवाणी की थी इसके बारे में। उनकी मृत्यु, शरीर 1902 में उन्होंने शरीर छोड़ा था, उसके ही पहले कहा था कि भारत जो होगा, बहुत सारी चीजें उसमें कही थी। 50 साल में एक तो मुक्त होगा, वो सत्य हुआ। 20 वर्ष के अंदर महायुद्ध होंगे, वो भी सत्य हुआ। एक स्पिरिचुअल पावर बनेगा यह भारत। एक समय आएगा भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और विश्व को परमात्मा का संदेश देगी। अ डे विल कम व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर। वो समय आ चुका है कि भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में क्या करेगी? परमात्मा संदेश फैलाएगी। वो प्रकाश भारत से निकलेगा, अध्यात्म का प्रकाश। खिच खिच कर आत्माएं आएगी यहां पर और आना चालू हो गई है। मुरली 82 की है। इतने साल गुजर गए, आ रही है और आती ही रहेगी, क्योंकि यही जननी है, अक्षय ज्ञान का स्रोत भारत है। सितारे के बीच बादल तो नहीं आ जाते? क्या प्रश्न पूछा है बाबा ने? बादल तो नहीं आ जाते? यदि सितारा और बादल आए और जाए तो ये स्पष्ट नहीं दिखेगा, तो आत्माएं आएगी कैसे? कौन से बादल? नियम और मर्यादा रुकने के लिए कहा बाबा ने। बादलों में क्या कहा? माया के तो नहीं कहा है बादल? कौन कौन से? ये चिंतन का विषय है। ऐसे वो कौन से बादल है जब वो बीच में आ जाते हैं तो आत्मिक स्मृति लुप्त हो जाती है? ऐसे वो कौन से बादल है जो बीच में आ जाते हैं तो दूसरों को आत्मा देखना बंद हो जाता है? देह अभिमान उत्तर नहीं देना है इस क्लास में, दूसरा उत्तर दो। मैं और मेरापन छोड़ कर जब दूसरों के अवगुण दिखाई दे तो आत्मिक दृष्टि खत्म। पर चिंतन के, पर दर्शन के बादल, अवगुणी दृष्टि के बादल, दैहिक दृष्टि के बादल आ जाए, इच्छाओं के बादल, असंख्य इच्छाएं हैं और भागे जा रहे इच्छा को तृप्त करने के लिए, कैसे आत्मिक स्थिति रहेगी? पुरुषार्थ की लगन जहां पर नहीं है, पुरुषार्थ आलस्य का बादल, अलबेलेपन के बादल, मूर्छा में जी रहे, पता ही नहीं ये समय कौन सा है। ज्ञान है, मुरली हम सुन रहे हैं, परंतु आत्मा जागृत नहीं हुई है पुरुषार्थ के प्रति। समय कौन सा है? क्या हम कर रहे हैं? अमृत वेला कैसा हो रहा है? नींद में जा रहा है, आलस में जा रहा है, अलबेलेपन में जा रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, कभी किसी टाइम पे कभी किसी टाइम पर। ये अगर हो रहा है तो ये मूर्छा की अवस्था है, अर्थात ये बादल है। मुरली सुन रहे, नोट्स लिख रहे, परंतु चिंतन कुछ भी नहीं है, अध्ययन नहीं है, चर्चा नहीं है, उसकी गहराई में नहीं जा रहे, ऊपर ऊपर से सतह में तैर रहे। ये भी बादल है, ये भी आलसी है। दिनचर्या बीत ऐसे रही है कि जिसमें बाबा लोप हो जाता है बीच में। 9 बजे पता नहीं कहां चला जाता है, सीधा 6 बजे आता है ड्यूटी से वापस आने के बाद। सेवा उसी की, और उसी को भूले हुए जिसकी सेवा है। ये सब बादल है। तो बादल ना हो, अगर है तो कौन सा बादल है? काला है, सफेद है, कैसा है? उसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करो, बादल का थोड़ा डायग्नोसिस, कौन सा बादल है, ट्रीटमेंट क्या है इस बादल की, इसका स्वचिंतन करना है। यदि बादल फट जाए तो कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है, यदि विकार का बादल फट जाए तो विकारों की सुनामी भी आ जाए। अगले ग्रुप से बाबा ने बात की है, स्वीडन या फिर नैरोबी। नंबर 1 की बात की है, सदा विजयी, कभी भी हारने न वाले, सफलता गले का हार है, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, जन्मसिद्ध अधिकार है। 3 समान है सफलता के, पावरफुल, बार 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 रिपीट करना है। यहां पर बाबा ने कहा कहीं रुकते तो नहीं हो, और फिर रुकने का एक कारण बताया, कौन सा? मर्यादाओं में ऊपर नीचे होती है तो गाड़ी रुक जाती है। सबसे पहली बात तो क्या मैं मर्यादाओं को जानता हूं? स्मृति में है पर मर्ज है या इमर्ज है? यदि मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। ये युग कौन सा है? 2 नाम दिए युग के, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग और दूसरा उड़ती कला का युग, उड़ना रुकावटें नीचे, उड़ना हिमालय नीचे, समस्याएं नीचे, पहुंचे कि पहुंचे, उड़ना। पर उड़ेंगे कब? जब मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे कब? जब नियमों का पालन करेंगे। यदि सूक्ष्म में और स्थूल में भी बार बार उल्लंघन हो रहा है तोड़ती कला नहीं होगी, समस्याएं होंगी, पत्थर तोड़ते रहेंगे, उड़ेंगे नहीं। दुख होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, कंप्लेंट्स होंगी, और सारा ब्राह्मण जीवन इसी में जा रहा है, कंप्लेंट्स में। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, व्यक्ति ठीक नहीं, परिस्थिति ठीक नहीं, स्वभाव स्थान ठीक नहीं है, आंगन में दोष है, कैसे नाचे, दूसरा आंगन चाहिए, दूसरा मिल गया तो और वहां कुछ, व्यक्ति ठीक नहीं है। इस बात की चेकिंग आप सबके लिए एक होमवर्क, इस ईश्वरीय विद्यालय के क्या क्या नियम और मर्यादाएं है जो आपको पता है वो सारे लिख के रखना कल सारे दिन भर में। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कौन कौन से नियम है, कौन कौन सी मर्यादाएं हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो बिल्कुल मस्ट है, उसके सिवा ब्राह्मण ही नहीं कहला सकते। वो खुद ही लिखना, खुद ही चिंतन करना, बाबा के कमरे में बैठना और स्वयं की चेकिंग करना, इन नियमों से मैं कौन से नियम में कमी है मेरी। एक नियम तो हम आपको बता रहे, संपूर्ण पवित्रता। तो ये बात। अगला ग्रुप जिससे बाबा मिले हैं वो है स्वीडन। निश्चय बाप में, स्वयं में और ड्रामा के हर सीन में। उसके लिए क्या करो, अपनी विशेषताओं को सामने रखो, कमजोरी को नहीं। बार बार केवल कमजोरियों का ही चिंतन करते रहना, मुझ में ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी नहीं सिखाया बाबा ने। अगर है, क्यों है, क्या स्रोत है उसका, कहां से उद्गम स्थान कौन सा है, ये संस्कार अचानक इमर्ज होता है, कहां से आ रहा है, कुछ तो होगा, कुछ तो इसको न्यूट्रिएंट्स कहीं से तो मिल रहे होंगे, पोषक तत्व, कुछ तो वो होगा, वो सीन, वो दृश्य, वो स्टिमुलस, वो ट्रिगर, वो कोई तो फैक्टर होगा जो आते ही ये बाहर निकलता है, चाहे संस्कार, चाहे संकल्प, कोई एक स्वभाव, कोई एक आदत, कहां से आ रही है कि जो इन ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विरोध में है, परंतु है, चल रही है, है तो ढूंढो, सीक एंड ई शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल ओपन, Ask and ye shall get, ढूंढो तो मिलेगा, खटखटाओ तो दरवाजा खुलेगा, मांगो तो मिलेगा। अपनी ही कमजोरियों को सूक्ष्म रीति से इन्वेस्टिगेट करना, संशोधन करना, रिसर्च करना और उनको समाप्त करना, यही भट्टी का उद्देश्य है। तो बाबा ने कहा कमजोरियों को सामने नहीं, विशेषताओं को सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, विशेषता मुझ में ये है और कमजोरियां जो है ये अगर है तो इसको मैं कैसे नष्ट करूं, इसके ऊपर चिंतन। तो तीन निश्चय की बात यहां पर बाबा ने की, स्वयं में, बाप में और ड्रामा के हर सीन में। जीवन में ये भी देखो इस भट्टी में। दूसरा होमवर्क, तीसरा होमवर्क सबके लिए, जब से ब्राह्मण बने और आज तक जो जो सीन्स आए इस ड्रामा में, ब्राह्मण जब से बने तब से आज दिन तक कौन कौन से सीन आए और किस किस सीन के प्रति मेरे मन में कंप्लेंट है और मैं ये सोचता हूं कि ये सीन नहीं आना चाहिए था और मुझे लग रहा है इस सीन में ये व्यक्ति दोषी है, और ये भी सोचो कि अब जो चीज हो गई उस सीन में क्या कल्याण छुपा था, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, उस कल्याण की खोज, उस कल्याण के खोज, ये इस भट्टी में बैठकर करना है। तो यहां पर बाबा ने तीन निश्चय की बात की, उसके बाद में लास्ट में दादियों से जो मुलाकात है, वास्तव में ये जो पैराग्राफ है पिछले मुरली से है, जिसमें कुछ बच्चे विदेश में गए हैं और कुछ विदेश से आ रहे हैं, वहां से लिया हुआ है ये, जिसमें बाबा ने कहा है क्या करो, दो सौगात दो संसार की आत्माओं को, प्रेम और शांति की, टॉपिक पर नहीं बोलो, टॉप की चीज दो, ये दो चीज है, टॉप की चीज है, प्रेम की और शांति की दो बोल या दृष्टि, हड्डी सेवाधारी हो, ऐसे घूम के आने वाले नहीं हो, साइट सीइंग वाले नहीं हो, केवल गए ढूंढा सब कुछ किया और आ गए, ये साइट सीइंग करने नहीं है। हमारी जो साइट सीइंग है वो स्पिरिचुअल साइट सीइंग है, हमें देखना है सूक्ष्म वतन को, परम धाम को, सतयुग को, सृष्टि चक्र को, ये हमारी साइट सीइंग है। इस संसार की साइट सीइंग हमारी साइट सीइंग नहीं है। इस संसार की जो चीप मनोरंजन है, चीप एंटरटेनमेंट, वो हमारे एंटरटेनमेंट नहीं है, हमारे एंटरटेनमेंट रूहानी है, जिसमें स्व का और विश्व का कल्याण समाहित हो। कल कहा था ना वरदान में, कंबाइंड आप और बाप और आप और स्व सेवा और विश्व सेवा, जैसे विष्णु कंबाइंड है वैसे। तो दो गिफ्ट, दो सौगात आत्माओं को दो। तो टोटल मुरली में कौन कौन सी बातें थी, एक तो बताया चित्रकार की, दूसरी बताई आत्मिक दृष्टि की, तीसरी बताई निश्चय की, और चौथी एक नंबर वन की, और लास्ट में सेवा की, हड्डी सेवाधारी बनना, जो पालना ली है अब देना है, जो अंदर है वही दिखाई देगा, जो रग रग में भरा है वही दिखाई देगा। तो सभी करेंगे, सोने से पहले जिनके पास मुरली है वो पढ़कर सोए, या फिर कल सुबह या दिन भर में कभी भी एक बार आज की जो अव्यक्त वाणी है उसको जरूर जरूर पढ़ना है। ऐसे डबल विदेशी बच्चों को और सेवाधारी बच्चों को, ऐसे बाप समान मन वचन कर्म से फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, ऐसे भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले डबल लाइट बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।